आप इस शिविर में साधना के अलावा कुछ शिक्षण भी प्राप्त करते हैं। आपका आधा समय साधना में लगे हैं और आधा समय शिक्षण में लगे हैं, ऐसी योजना बनाई गई है। शिक्षा भी साधना का ही अंग है। शिक्षा को आप साधना से बाहर मत मानिए। आपकी साधना और शिक्षा संबंधित की जो कार्य पद्धति है संकल्प साधना शिविर की, आप उसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए कि क्यों कराया जा रहा है, क्या कर रहे हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, मुझसे भी आप जानते हैं, आप क्या सीखते हैं। आपको यहाँ वाणी का मुखर होना सिखाया जाता है। आपको यहाँ प्रज्ञा पुराण की कथा कहना सिखाया जाता है और शॉर्ट पोएट्री के माध्यम से व्याख्यान देने का अभ्यास कराया जाता है। आपको यहाँ संगीत के माध्यम से जनजागरण करने की भूमिका निभाने का अभ्यास कराया जाता है। आप तो जानते हैं ना, भाषण देने की कला, गायन की कला, ये एक शिक्षण यहाँ का है ना। शिक्षण भी आप साधना का अंग है, तो कम मत मानिए। दूसरा एक और चीज़ सिखाई जाती है आपको, क्या सिखाया जाता है इसके अलावा वाणी का उपयोग करने के अलावा वाणी के कई उपयोग सिखाए जाते हैं। संगीत का शिक्षण इसीलिए सिखाया जाता है कि आप जनमानस की भावनाओं को बढ़ाने में ठीक हो सकें। आपको दृश्य शिक्षण का एक क्रिया सिखाई जा रही है, दृश्यों के माध्यम से। ये तो वाणी से कहा, लोगों ने कान से सुना, लेकिन दिखाने से भी कुछ बात बनती है। सत्संग स्वाध्याय का एक, लोगों को स्वाध्याय का लाभ दें, सत्संग का लाभ दें। स्लाइड प्रोजेक्ट उसी में शुमार होता है कि आप उसको दृश्य घटनाएं दिखाते चलें। ये परिस्थितियाँ आज की हैं, इन परिस्थितियों के विरुद्ध बगावत हमको करनी चाहिए और हम ये नहीं करेंगे। और हमको यही करना चाहिए कि उचित और अनुचित का आज का विवेक, इसको दूसरे शब्दों में सत्संग कहते हैं, यह आपको स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से सिखाया जा रहा है। शिक्षा नंबर दो हुई। तीसरी, आपको दृश्य उसी में शुमार होता है, चित्र प्रदर्शनी में शुमार होती है। चित्र स्लाइड प्रोजेक्टर से दिखा दिए तो क्या, और ये चित्र प्रदर्शनी की नुमाइश ला के दिखा दिए तो क्या। बात एक ही है, चित्रों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से शिक्षण, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तीसरा, इसके सिवाय क्या कराया जा रहा है आपको, आपको कुछ सेवा साधना के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन करने के लिए काम दिया जा रहा है। जन साधारण की सेवा भी तो करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष सेवा भी तो आप करनी चाहिए। प्रत्यक्ष सेवा नहीं करेंगे, केवल मात्र ज्ञान ही सुनाते रहेंगे, उपदेश ही करते रहेंगे। केवल उपदेश केवल नहीं है, ज्ञान के साथ साथ में कर्म का समावेश भी आवश्यक है। ज्ञान की महत्ता सबसे अधिक है बेशक, स्वाध्याय की महत्ता को मैं क्या कम बताऊंगा क्या, नहीं। सत्संग की महत्ता कम करने का मन है क्या, ना। चिंतन और मन की महत्ता कम है क्या, ना। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, केवल मात्र ज्ञान के साथ, ज्ञान अपूर्ण है, उसके साथ साथ में कर्म का जो है ना बेहद ज़रूरी है। कर्म और ज्ञान जब दोनों मिल जाएंगे तब बात बनेगी। ध्यान जप के साथ साथ में आपको सेवा कार्य करना नितांत आवश्यक बताया गया है। अपने मिशन में ऋषियों की प्राचीन परंपरा को का अनुकरण करते हुए साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चार चीज़ों को समान रूप से महत्व देने के लिए बताया गया है। आपको अपनी साधना में सेवा का भी समावेश करना पड़ेगा। सेवा किस तरीके से करें, सेवा से मतलब है प्रत्यक्ष सहायता। ज्ञानदान भी यह सेवा है, लेकिन यहाँ ज्ञानदान और ब्रह्म विद्या की बात नहीं चल रही है कि आप लोक मंगल के लिए जनसाधारण को की सेवा कैसे करेंगे, आपने जो समाज से ऋण लिया है उसको चुकाएंगे कैसे, आप लोगों को ऊंचा उठाने के लिए करेंगे क्या, ये भी तो एक काम है आपके जिम्मे, ये भी साधना करेंगे। इसलिए एक काम ये है कि आप दूसरों की कुछ सहायता कर पाएँ। सहायता कौन सी कर पाएँ, जैसे ज्ञान की साधना एक चीज़ है, आप किसी आदमी का ज्ञान बढ़ा दें तो उसकी असली सेवा हो गई। ज्ञान के बाद दूसरा नंबर आता है स्वास्थ्य का। किसी आदमी की सेहत ख़राब हो रही है, आप ऐसी नसीहत दें, ऐसा तरीका बताएं, अथवा कोई चिकित्सा कर दें जिससे कि उसका खोया हुआ स्वास्थ्य फिर से मिल जाए, तो दूसरे नंबर की सेवा है। तीसरे नंबर की सेवा जो आजकल सब लोगों ने सबसे पहला नंबर दर्जा दिया हुआ है, वो है जिसको पैसे की सहायता कहते हैं। पानी पिला देंगे किसी को, ठीक है पिलाई, फिर क्या करेंगे हम ठहरने का इंतजाम करेंगे धर्मशाला, वो भी ठीक बात अच्छा की। और क्या करेंगे हम सराव्रत खोलेंगे और सराव्रत में रोटी पानी खिला फोकट की रोटी का इंतजाम कर देंगे, चलिए ये भी अच्छी बात। धर्मशाला बनाने से लेकर के सराव्रत लगाने और प्याऊ लगाने तक के ढेरों काम ऐसे हैं जिससे कि एक आदमी दूसरे की सेवा किया करते हैं। लेकिन इन सारी की सारी सेवाओं में ज्ञान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ज्ञान की सेवा से आदमी का जीवन बदल जाता है। वस्तुओं की सेवा जो आजकल सबसे बड़ी मानी जाने लगी है, वास्तव में सबसे बड़ी है नहीं, उसकी कोई निंदा थोड़ी करता है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप किसी की सेवा मत कीजिए, या किसी को पैसा मत दीजिए, या किसी को रोटी मत खिलाइए, या किसी की दवा दारू कर, ये कौन कहता है? पर मैं तो क्वालिटी की बात कहता हूँ आपसे, कि क्वालिटी में ये धन के द्वारा शरीर की सहायता, धन के द्वारा शरीर की, धन के द्वारा शरीर की, धन के द्वारा शरीर की आप सहायता कर सकते हैं। बस धन किसी की जीवात्मा को ऊंचा उठाने में मददगार नहीं हो सकता। धन केवल कपड़े का इंतजाम कर सकता है, भूख का इंतजाम कर सकता है, इलाज का कर सकता है, ये शरीर की सेवा है। आत्मा की सेवा, मन की सेवा, आदमी की उज्ज्वल भविष्य की सेवा, ये तो सेवा केवल ज्ञान से ही बन सकती है। लेकिन ज्ञान भी अपूर्ण है, आदमी सेवा न करे, तो लोगों का श्रम अपना खर्च न करे, केवल ज्ञान ही खर्च करता रहे, जीव तो जीव को ही चलाता रहे, प्रत्यक्ष सहायता के लिए किसी काम ना आए, तो भी बात बनती नहीं है। इसलिए यहाँ इस शिक्षण में एक लोक सेवा का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप जड़ी बूटियों के द्वारा आप चिकित्सा कर सकें। जड़ी बूटियाँ वास्तव में यही औषधियाँ हैं, अमृत इन्हीं को कहा गया है। आदमी जिंदा रहता है, सभी वनस्पतियों पर जिंदा रहता है। शरीर में जो कमियाँ पड़ जाती हैं वो भी वनस्पतियों से दूर की जा सकती हैं। शरीर में जो विषाणु पैदा होते हैं वो भी वनस्पतियों के उपयोग से हो सकता है, क्योंकि शरीर वनस्पतियों का बना है, घास का बना है, ये अनाज का बना है। इसमें जो भी चीज़ है, आप कहाँ से बने, कहाँ से आप पाते हैं? अन्न से पाते हैं, फिर जल से पाते हैं, दो और कहाँ से पाते हैं? जो कुछ भी शरीर के भीतर है ये सब मिट्टी का है। मिट्टी की सेवा करना अच्छा तो है, ज़रूरी भी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन तो भी इसको करना तो चाहिए। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को संवर्धन करने के लिए जड़ी बूटी आपको चिकित्सा सिखाई जा रही है, ताकि आप जड़ी बूटियों से न केवल बीमारियों का इलाज करें, बल्कि जो भी आपको इलाज के बहाने आपके संपर्क में आए उसको आप ये बात सिखाएं कि संयमशील होना पड़ेगा। स्थायी निवारण करने के लिए दवाएं काफ़ी नहीं हैं, ये टेम्परेरी रिलीफ तो है, पर ये स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए ज़रूरी है कि आदमी संयम सीखे। इसलिए आप चिकित्सा के माध्यम से, कोई बुखार खांसी आ गया है इसको दे दिया उखाड़ के, इसमें से क्या है तो तुलसी दे दी, गिलोई दे दी, कोई नुकसान की चीज़? इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, सब फायदे की चीज़ें। नुकसान का नुकसान की चीज़ें हमने जड़ी बूटी विज्ञान में ली ही नहीं, नुकसान की चीज़ों को हमने हवन में लिया ही नहीं, केवल सौम्य और सात्विक चीज़ों का ही हमने उपयोग किया है और कराया है। इसलिए यहाँ 20 औषधियों के द्वारा, 20 जड़ी बूटियों के द्वारा जहाँ आप चिकित्सा सीखें, वहाँ एक बात ज़रूर सीखें कि आसन और प्राणायाम के माध्यम से, स्वास्थ्य और संयम के माध्यम से आदमी किस तरीके से अपने शरीर को, सेहत को ठीक करके रखे। ये तीन तरह की शिक्षाएँ इस समय आपको मिलती हैं, एक चिकित्सा, स्वास्थ्य संवर्धन, फर्स्ट एड वगैरह, एक संगीत, व्याख्यान, प्रवचन वगैरह, तीसरा संगीत, और संगीत के माध्यम से जनजागरण, यही कुछ और हैं रचनात्मक सेवाएँ, जैसे दीवाना पर आदर्श सेवा कीर्तन वगैरह हैं। इन सारी की सारी शिक्षाओं के पीछे, इन सारी की सारी गतिविधियों के पीछे जो बात छिपी हुई है, वो एक ही बात छिपी हुई है कि आपको लोक मंगल के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने चाहिए। आज लोगों को विचार देने की बेहद ज़रूरत है, जीभ खोलनी पड़ेगी आपको। हर आदमी कितना भूला हुआ और भटका हुआ आदमी, हर दिशा में जहाँ कहीं भी आप देखिए आदमी के भटकाव का ठिकाना नहीं। पहले आदमी जब जंगली था, आदिमानव था, तब कम से कम प्रकृति के साथ में लाई जुड़ता नहीं था, जितनी सीमित जानकारी थी उससे उसको सही जानकारी थी। लेकिन आज तो आदमी ने जानकारी बहुत इकट्ठी कर ली है, लेकिन सारी जानकारियाँ गलत 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 पूरी तरीके से, आदमी इस गलती के भटकाव में आ गया है। इसका चिंतन प्रगतिशील तो सुना जाता है, प्रगतिशील है, पढ़े लिखे भी लोग बहुत हैं, ग्रेजुएट भी कहलाते हैं, लेकिन जहाँ तक जीवन की समस्या का संबंध है उसके बारे में वो जानकार नहीं है। जनता को भी यही करना पड़ेगा, सोए हुए को तो जगाना ही चाहिए, आप सोए को जगाएंगे नहीं तो ये मरेगे मर्दों की तरीके से बैठे रहेंगे। जनजागरण इसी का नाम है, लोकमानस का परिष्कार। आदमी का चिंतन उल्टा हो गया, और उल्टे चिंतन को उलट देने की वजह से उसने सारी समस्याओं को गड़बड़ा दिया है, स्वास्थ्य को गड़बड़ा दिया, मानसिक संतुलन को गड़बड़ा दिया, अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा दिया, अपने कुटुंब और परिवार को गड़बड़ा दिया, सामाजिक संबंधों को गड़बड़ा दिया, अपने लोक और परलोक और भविष्य को गड़बड़ा दिया। ये कैसे गड़बड़ हुई? ये केवल एक ही कारण है कि आदमी को सही चिंतन न मिल सका, सही चिंतन के अभाव में सारे जीवन की ये मोटर गड़बड़ा गई, सही ड्राइवर के न मिलने की वजह से, सही मार्गदर्शन न होने की वजह से अच्छी खासी मोटर एक्सीडेंट में चली जाती है और बस जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है। हमारा जीवन एक मोटर की तरीके से है, इसको संचालन करने के लिए अच्छा ड्राइविंग चाहिए, न केवल आपके लिए बल्कि सारे समाज के लिए भी। आज सबसे महती आवश्यकता इसी ज्ञान युग की है, इसी विचार क्रांति अभियान की है, इसी प्रज्ञा अभियान की है, इसी जन जागरण की है। आपको इस संबंध के काम करने के लिए जहाँ शिक्षण चलाया जा रहा है, आपको ईसाई चर्चों की वो शैली सिखाई जा रही है कि जिसमें आप लोगों की सेवा करें, सेवा करने के बाद में सहानुभूति इकट्ठी करें, सहानुभूति के बाद में सहयोग प्राप्त करें और जनता के सहयोग से बड़े काम करने में सफल और समर्थ हो सकें। ईसाइयों का ईसाई चर्चों की नीति यही है, प्राचीन काल के ऋषियों की भी नीति ये थी, जनता की वो सेवा भी करते थे, केवल उपदेश ही थोड़े देते थे। जहाँ जाइए उपदेश, जहाँ जाइए उपदेश, जहाँ जाइए उपदेश, अरे तो उपदेश को खाया सर पर बिछाया क्या करें, अब सहानुभूति तो लीजिए पहले। सहानुभूति इकट्ठी करने के पीछे ये संभव है कि आपकी बात कोई सुने और अपने विचारों को बदलने के लिए कोई तैयारी करे। आपके कहने से क्यों विचार बदलेगा और क्यों अपनी कोई बेइज्जती करेगा, क्यों तोहिन कराएगा अपनी आप, क्या आपके उसके विचार गलत थे, सो विचार ने आपके नसीहत सुनते ही बदल दिए, बेइज्जती हुई ना, कोई नहीं सुनेगा। आप सहानुभूति इकट्ठी कीजिए पहले। सहानुभूति इकट्ठी करने के लिए सेवा के क्रम यहाँ बनाए गए हैं, आपको इसके अलावा भी पहले बताए गए थे। साइड प्रोजेक्टर चलाने की बात कही गई थी, घर घर में जाइए, घर घर में जनजागरण का संदेशा सुनाइए, युग बदल रहा है इसकी बात कही है। आपको इससे पहले भी बताया गया था कि आप कभी साइकिल से संगीत बजाते हुए निकल पड़े, दो या चार की टोली में निकल पड़े, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। पिकनिक के लिए घर से निकलते हैं, इससे बेहतरीन पिकनिक कुछ हो ही नहीं सकती। तीर्थयात्रा की बाबत हमने आपसे कहा है कि आप तीर्थयात्रा की तैयारी करें और बाहर जाने की तैयारी करें, आपको बोलना सीखें, संभाषण सीखें, लोगों से बातचीत करें, ऐसी बातचीत करें जो आप दूसरे आदमी में प्रभाव डाल सकें वगैरह, ये बातें आपको यहाँ सिखाई जा रही हैं। केवल एक ही बात सिखाई जा रही है, इस संक्षेप में आप सुनना चाहें तो ये नया युग आ रहा है, इस नए युग की तैयारी की पहली वाली भूमिका निभाने की बात आपको सिखाई जा रही है। जड़ी बूटियों के द्वारा, इलाज के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आप लोगों की खोई हुई सेहत को किसी तरीके से पाने में मददगार बने। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कोई एहसान मानेगा, जो एहसान मानता है वो कहना भी मानता है, एहसान मानता है वो कहना भी मानता है। आपका लोग एहसान माने इसके लिए आप ईसाई चर्चों की तरीके से चिकित्सा को अपना व्यवसाय बना लें, व्यवसाय नहीं सेवा का माध्यम बना लें चिकित्सा को। चिकित्सा में हमारे यहाँ आसन और प्राणायाम की भी चिकित्सा आती है, आप इनको बना लें। स्वास्थ्य के नियमों की बात करें, खेल कूदों की बात करें, जिससे जनता के स्वास्थ्य का संवर्धन होने का तरीका निकल आवे। आजकल हमारे स्वास्थ्य के आज के अपने कल्प साधना सत्रों के जो भी व्यक्ति आए हुए हैं, हम इनको ये शिक्षण देते हैं कि आप जनता की सेवा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत सी सेवाएँ, पर लेकिन ये सेवा सरल है, ये कठिन नहीं है, इसका हाथों हाथ लाभ होता है, तुरंत इससे आदमी की समस्याओं के समाधान हो जाते हैं स्वास्थ्य की सेवा के लिए। और आपको व्याख्यान कथाओं के माध्यम से, ये आजकल का जमाना बच्चा है, ये कोई प्रौढ़ समाज नहीं है हमारा। इस प्रौढ़ समाज को तो तर्क, तथ्य और दूसरी चीज़ें भी काम दी जाती हैं, लेकिन अपने 70% हिंदुस्तान को जिसमें बिना पढ़े लोग रहते हैं, पिछड़े हुए लोग रहते हैं, इनको आप किसी और तरीके से बता नहीं सकेंगे। धर्म मंच से जाइए और कथानक कहिए, कहानियाँ कहिए, कहानियाँ तो बच्चों को भी प्यारी लगती हैं, सिनेमा तो कहानियाँ ही तैयार करते हैं, कहानियाँ ही बेचते रहते हैं, सीमे मालदार हो जाते हैं। कहानियाँ अपने आप में एक सामर्थ्य का स्रोत है जो किसी ने कहा नहीं। पुराने लोग तो समझ जाते थे, भागवत की कथा, रामायण की कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा, अमुक की कथा, ये सब व्याख्यान और सत्संग इसी बात के थे कि जनमानस को परिष्कृत बनाने के लिए कोई रास्ता निकाल दें और लोगों को समझाएं। ये बोलने की कला, भाषण की कला आपको यहाँ सिखाते हैं। संगीत उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हृदय का स्पर्श करने के लिए, भावना का स्पर्श करने के लिए अगर कोई चीज़ आती है तो संगीत आता है। इसलिए संगीत की शक्ति अपने आप में है, ख़ासतौर से अशिक्षित लोगों में जो कि देहात में पड़े हुए हैं, उनको व्याख्यान की बात समझ में नहीं आती, उससे संगीत में भाव रहते हैं। इससे अगर उनकी भाषा से, स्थानीय भाषा से थोड़ी भिन्नता हो तो भी काम चला लेते हैं। आज का व्यक्ति हर दृष्टि से गिरावट के रास्ते पर चल रहा है। ये गिरावट स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक गिरावट। भगवान की दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आदमी को गिरा पाती हो। आदमी अपनी खुराफातों से और अपनी गलतियों से गिरने के लिए कोशिश करता है। आज यही हुआ है, पहले भी जब कभी भी ऐसी मुसीबतें आई थी यही हुआ था। लोगों ने अपनी गलतियाँ की, अपना रास्ता भुला दिया, अपने कर्तव्य और फर्जों की ओर से मुँह मोड़ लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम ये हुआ कि एक के बाद एक मुसीबतें आईं और लोग तबाह होते चले गए और बर्बाद होते चले गए। आज आप नज़र तो उठा के देखिए, सारे संसार के ऊपर नज़र उठा के देखिए, सारे संसार के न सही अपने ऊपर नज़र उठा के देखिए और अपने घर वालों के ऊपर नज़र उठा के देखिए, ये कैसे हो रहा है। इनका स्वास्थ्य सब गिर रहा है, स्वास्थ्य बराबर गिरता चला जाता है। औसत आदमी का स्वास्थ्य दिन दिन नीचे की तरफ चल रहा है, उसके अंक ऊपर को नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कारण क्या होगा? पहले की अपेक्षा खाने की वस्तुएं भी ज़्यादा है, सामान भी ज़्यादा है, फिर इस तरह की मुसीबत क्यों आती है? आदमी भटक गया है जीवन यापन करने की चर्चा के संबंध। खान पान सब अस्त व्यस्त, सब अस्त व्यस्त। जिसको हम खारी नमक कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड एक तरह का जहर है, और इसके लिए ज़रूरी है नमक, बिल्कुल ज़रूरी। सोडियम क्लोराइड है, ऐसे ऐसे हम लोग नशे पीते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसका परिणाम है कि स्वास्थ्य की तबाही हमने अपने आप की है, अपने किसी ने नेचर ने नहीं किया। पैसे की तंगी हमने स्वयं की है, और अपने घर की समस्याओं को उलट पलट करके हमने ही रखा है। और पैसे की तंगी का जहाँ तक सवाल है, तो यूर खर्ची की वजह से एक, अथवा योग्यता न बढ़ा करके कम योग्यता की स्थिति में बने रहना और थोड़ी योग्यता के बदले में कम पैसे प्राप्त करना। कम पैसे प्राप्त करेंगे तो आपका गुजारा कैसे हो सकता है? कठिनाई से सीधी साधी सी बात। खर्चा फिजूल खर्ची से करेंगे तो आप मुसीबत में रहेंगे और अच्छी आमदनी होते हुए भी आप तंगी का अनुभव करेंगे। इसके विरुद्ध अगर कोई आदमी गरीब है, कम कमाता है, तो भी अपनी जेती लंबी सौर के हिसाब से अपना पैर कम फैला के रख लेता है तो खुशी की ज़िंदगी जीता है, हंसती ज़िंदगी जीता है, कम पैसों से गुजारा कर लेता है। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल आदमी के विचार करने के, सोचने के तरीके का है। आया स्वास्थ्य तबाह हुआ हो, अथवा मानसिक संतुलन तबाह हुआ हो, अथवा गृहस्थ तबाह हुआ हो, अथवा सामाजिक संबंध तबाह हुए हैं, इसके मूल में दूसरों की गलती न हो, ये तो मैं नहीं कहता, दूसरों की भी हो सकती है, लेकिन दूसरों की ही मत कही, उसमें कुछ गलतियाँ अपनी भी होती हैं। अपनी गलती क्या है? जानबूझ के तो नहीं कहते लोग, पर स्वभाव का अंग बन जाने की वजह से वो गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। तब आपको एक ही बात करना है कि जन जन के लिए, उसके विचारों को परिशोधन करने के लिए, ब्रेन वॉशिंग के लिए, दिमाग की सफाई के लिए, दिमाग में नई स्थापना करने के लिए आप कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। कि जो शिक्षण है यहाँ का, समाज की इतनी महती आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिखाया जा रहा है। इसीलिए नहीं सिखाया जा रहा है कि आप वक्ता हो जाए और कहीं से कुछ पैसे ले आया करें। इसीलिए संगीत नहीं सिखाया जा रहा है कि आप नाचना सीखें। इसलिए आपको जड़ी बूटी चिकित्सा नहीं सिखाई जा रही है कि आप यहाँ रह करके कोई दवाखाना खोलें और अस्पताल खोलें और कोई मालदार बने। नहीं, मालदारी हमारा उद्देश्य नहीं है, मालदारी का दूसरे दुकानों का उद्देश्य है। आपको मालदार बनना हो तो दूसरी दुकानों पर जाना चाहिए, हमारे पास तो एक ही दुकान है अध्यात्म के पास तो एक ही हथियार है कि लोगों के विचारों को बदल दे और दृष्टिकोण को बदल दे और भावनाओं को बदल दे और ईमान को बदल दे। ये बदल जाने के बाद में दुनिया बदल जाती है, मनस्थिति बदल जाने के बाद में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, बात सही है। तो आदमी की मनस्थिति को कैसे बदला जाए? आदमी की मनस्थिति को बदलने के लिए वही किया जा रहा है जो आपको सिखाते हैं, आपको वाणी का उपयोग सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा हथियार है वाणी का उपयोग। नारद जी ने इसी का उपयोग किया था और नारद जी ने वाल्मीकि का दिमाग बदल दिया था, नारद जी ने प्रहलाद का दिमाग बदल दिया था, नारद जी ने पार्वती का दिमाग बदल दिया था, नारद जी ने ध्रुव का दिमाग बदल दिया था। इसी वाणी का उपयोग अगर ठीक तरीके से किया जा सके तो आप विश्वास रखिए लोगों के दिल और दिमागों को बदलने में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है। सिनेमा देखा ना आपने, दृश्य और श्रव्य, दो ही चीज़ों का मिलाने के पश्चात में सिनेमा कितना हावी हो गया है। लोगों के विचार और ध्यान को मैं बदलने में उसने भराया भरा कितनी भूमिका निभाई है। आपको वाणी का, दृश्य और श्रव्य का जहाँ शिक्षण दिया जाता है, ये इतने पैने हथियार हैं, अगर आप इन हथियारों का उपयोग कर सकें तो आज की अवांछनीय परिस्थितियों से लोहा लेने में समर्थ बन सकते हैं। कल का उज्ज्वल भविष्य हमको बनाना है, उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए जिन तैयारियों की ज़रूरत है, उन तैयारियों में आदमी को अपने विचार करने की शैली बदलना बहुत ज़रूरी है। उकसाना बहुत ज़रूरी। इसके लिए आपको वाणी की ज़रूरत, आपको हृदय को गुदगुदाने के लिए संगीत की ज़रूरत, सेवा के लिए जड़ी बूटियों की ज़रूरत। ऐसे थोड़े थोड़े काम आपको सिखाए गए हैं आदर्श सेवा की दीवारों पर लिख करके, लोगों के दिलों और दिमागों को घुमा देने का प्रयत्न, अचेतन मन को घुमा देने का प्रयत्न वगैरह। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े ऊँचे उद्देश्यों से संबंध रखती हैं। आप उनकी गहराई में विचार करना, तब आपको महत्व मालूम पड़ेगा, तभी आप उसको सच्चे मन से करेंगे। अगर आपको महत्व न मालूम पड़ा तो फिर आप सच्चे मन से उस काम को कर नहीं सकेंगे, इसका महत्व ही समझेंगे। अरे साहब, क्या प्रज्ञा प्रमाण हमें कथा कहनी है क्या, और देखिए प्रवचन कराना है हमको, कोई प्रवचन करने है क्या, फिर हमें कोई जड़ी बूटी सिखाई जा रही है, हमको जड़ी बूटी फैलाएंगे क्या, हमको संगीत सिखाया जा रहा है, हम क्या करेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक दृष्टि से भली से इन चीज़ का कोई महत्व न हो, लेकिन आप विश्वास रखिए जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, अगर आप सच्चे मन से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके भीतर एक ऐसी नवीनता और एक ऐसी विशेषता पैदा होगी जिसकी वजह से आप अपना भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को ऊंचा उठा सकते हैं और दूसरों के अंतरात्मा को ऊंचा उठा सकते हैं। मेहंदी पीसने वाला दूसरों के हाथ तो लाल करता ही है, पर इस पिसाई की वजह से उसकी अपने हाथ अनायास ही लाल हो जाते हैं। आप लोक मंगल की बात विचार कीजिए, जनसाधारण की विचार कीजिए, जन कल्याण की बात विचार कीजिए, साथ साथ में आप ये देखिए जैसे आप दूसरों के लिए सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, भगवान आपके लिए कष्ट उठाएगा, समाज आपके लिए कष्ट उठाएगा, समाज आपका सहयोग करेगा, जनता आपका सहयोग करेगी, विश्व मानव आपका सहयोग कोशिश करेगा। इसलिए आपको दूसरों का सहयोग अर्जित करने के लिए भगवान के नज़दीक आना चाहिए, और भगवान के नज़दीक आने का मतलब यह है कि ऊँचे विचारों का समुच्चय, ऊँचे विचारों को फैलाने के लिए आपको हर चंद प्रयत्न करना चाहिए। साहित्य का प्रयोग कैसे किया जा सकता है हमने बता दिया, लेकिन जनजन के पास तो जाना ही पड़ेगा, जनजन को परामर्श तो देना ही पड़ेगा। अगर आप परामर्श नहीं दें तो फिर अपने आप किताबों से ही काम हो जाएगा, आपका परामर्श की जरूरत क्या पड़ेगी, नहीं जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। आपको व्यक्ति के पास जाकर के अपनी क्षमता और प्रतिभा की छाप उन पर डालनी चाहिए, और छाप डालने के बाद में ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बराबर ऐसे परामर्श दें, आया मिलजुल के बातचीत करने में, आया विचार गोष्ठी के रूप में, आया सम्मेलनों के रूप में, किसी न किसी रूप में आप जनता के लिए ये प्रयत्नशील रहिए कि इनके विचार बदल दिए जाएँ, भावना बदल दी जाए, और घिनौने जिंदगी को परित्याग करके इनके अंदर ऐसे वेग पैदा किया जाए कि जन समाज के लाभ के लिए बड़े बड़े से बड़े काम बिना हिम्मत खोए कर सकें। आज यही कहना था आप लोगों से, समाप्त।